वास्तव में फैक्ट यह है कि हम ईश्वर से कभी अलग हुए ही नहीं, परमानेंट हम ईश्वर के साथ ही हैं। और यदि फाइनल ट्रुथ बोला जाए तो हम ईश्वर ही हैं। महाराज जी बस इतना कह रहे हैं कि जीव के अंदर जो ये कर्तापन है, इस कर्तापन के कारण ये अपने आप को ईश्वर से अलग करके देखता है और संसार की कल्पनाओं में फंस जाता है। इसी को मूल माया भी कहा गया। माया क्या है? जो है नहीं परंतु फिर भी प्रतीत हो रही है उसको माया कहते हैं। कर्तापन नाम की कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, लेकिन फिर भी कर्तापन के कारण इतना बड़ा माया जाल खड़ा हुआ है आपको। आपके देह का निर्माण भी कर्तापन के कारण ही हुआ है। फिर महाराज जी ने समतावास में यह भी लिखा कि कर्तापन कहां से आया, क्यों आया, इसका कोई ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कल्पना मात्र है। जो वस्तु है ही नहीं परंतु प्रतीत हो रही है उसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? निर्णय हमेशा सत वस्तु का होता है। जो चीज प्रेजेंट है, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, इस सृष्टि में एक ही है जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है, उसका नाम है ईश्वर या ब्रह्म। तो उसका तो अनुभव ऋषि करते आए हैं, उसका विज्ञान भी पेश करते आए हैं। ये तो वैदिक काल से लेकर आज तक इतने शास्त्रों की रचना कैसे होती थी, तो विचार करो। दुनिया के जितने भी आज की तिथि में भी फेमस लोग हैं जिनको दुनिया याद करती है, वो तो सारे के सारे केवल सत्पुरुष हैं। पूरी दुनिया में देखो, मोहम्मद साहब को कितने लोग याद करते हैं, ईसा मसीह को कितने लोग याद करते हैं, राम को कितने लोग याद करते हैं, कृष्ण को कितने लोग याद करते हैं, कबीर, नानक, जितने भी सत्पुरुष हुए हैं इनको तो दुनिया याद करती है, इनको तो पूछती है। यदि कुछ होता ही नहीं तो दुनिया की पागल थोड़ी ना जो पूछती इनको, क्योंकि उसकी ठीक प्रकार से हम जानकारी हासिल नहीं करते। उस मार्ग को जानने का हमारे अंदर शौक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं समझते, इसलिए भटकते रहते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली आप देखो कि पूरी दुनिया यदि किसी को पूछती है तो वो केवल सत्पुरुष है, जिन्होंने उस ईश्वर को जाना, उस ईश्वर का बोध किया। आज के घोर कलयुग में भी दुनिया उन्हीं को पूछती है। और कहीं दुनिया में आज भी मनुष्य जब शांति के लिए भटकता है और शांति की तलाश करता है तो वो अंत में किसी ना किसी सत्पुरुष के पास ही पहुंचता है। कहता है यदि कहीं कोई शांति है तो सत्पुरुष के पास ही है, अन्य कहीं दुनिया में शांति नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये पूरी दुनिया में कभी भी मनुष्य परेशान होगा तो दौड़ भाग के अंत में वो शांति की तलाश में, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ खींच के आए, चाहे वो मक्का मदीना की तरफ खींच के जाए, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ भी वो खींचेगा तो धर्म के कारण ही खींचेगा, ईश्वर के कारण ही खींचेगा। भले ही नकली गुरु उसको धोखे में डाल दें वो अलग बात है, लेकिन वो शांति की तलाश में ईश्वर की तरफ ही भागता है। तो उसी को सत्पुरुष कहते हैं। जो चीज है ये जीव उससे कभी भी दूर हो ही नहीं सकता। मैं उसका इटर्नल पार्ट हूं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि समुद्र की तरंग होती है, तरंग का समुद्र नहीं होता, तरंगों से समुद्र नहीं बनता, समुद्र से तरंगे बनती हैं। इसी प्रकार सब जीवों को मिला दो तो ईश्वर नहीं बनेगा, ईश्वर से जीव बनते हैं, ईश्वर से प्रकृति बनती है। लेकिन उनकी जो स्थिति है वो ठीक ऐसे ही है जैसे कि समुद्र और समुद्र की तरंग कहने में दो चीजें हैं। और तरंग का यदि विज्ञान तैयार करो तो साइंटिस्टों ने तरंग के ऊपर बड़े बड़े वॉल्यूम्स लिख दिए होंगे। समुद्र की तरंग के ऊपर ही इतनी खोज हो चुकी है कि बड़े बड़े वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे, बड़ी PhD मिल जाएंगी। जबकि वास्तविकता देखो, तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो तो समुद्र है। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि तरंग समुद्र का अंश है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। लेकिन यदि बुद्धिमान कोई व्यक्ति कहेगा तरंग का अस्तित्व तो है कहां, अस्तित्व तो केवल समुद्र का है, ये तो केवल नाम रूप है जो हमारी कल्पना में, जिसको हम समुद्र से अलग करके देख रहे हैं, वास्तव में तो नहीं है अलग। विचार की आंख से देखो तो तरंग समुद्र से अलग कोई चीज है क्या? सोचिए देखो, इसीलिए जब आदमी सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार या सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, और जो भी ऋषि हुए हैं, पूर्ण गुरु हुए हैं, उन पर श्रद्धा लाता है, श्रद्धा इसलिए लाता है, अपने आप को वो स्वीकार करता है कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी क्यों हूं? अज्ञानी इसलिए हूं कि पूरा प्रयास करने के बाद भी, हर मनुष्य पूरा प्रयास करता है, मुझको शांति नहीं मिली, मुझको चैन नहीं मिला, और ना इसके मिलने की कोई संभावना है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो आपके 1000 जन्म भी क्यों ना आपको दे दिए जाएं, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि बचपन से आज तक का यदि विश्लेषण करोगे तो आगे का विश्लेषण ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यदि ठीक ठीक विश्लेषण करोगे शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, साइंस के अनुसार नहीं। साइंस तो आदमी की मुसीबत मल्टीप्लाई कर देती है और मायाजाल में गहरा फंसा देती है। तो ये जो विज्ञान है वो ज्ञानियों का विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ही असल में यही होता है, जिसको ज्ञानी, जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं, वो तप करके, साधना करके, अपने अंदर जिस ज्ञान को वो पढ़ता था वेदों में, शास्त्रों में, उसी ज्ञान को वो अपने अंदर जब अनुभव कर लेता है, तो इसलिए सत्पुरुष को फिर विज्ञानी कहा जाता है। जिसने उस ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया वो विज्ञानी हो गया। तो विज्ञानी तो सत्पुरुष है जो सारी सृष्टि के स्रोत पर बैठा हुआ है और सब कुछ उसके बारे में जानता है, उसके अंदर कोई वहम नहीं। तो ऐसे सत्पुरुष पर यदि मेरी श्रद्धा आ जाए, उस पर मेरा विश्वास आ जाए, तो मैं अपने कल्याण के लिए, अपने चैन के लिए, अपनी शांति के लिए उसके आगे नतमस्तक होता हूं या उसके आगे अपने आप को समर्पण करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि संसार छूट जाता है, संसार वैसे ही चलता रहता है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन आपके अंदर की सोच उसके बारे में बदल जाती है। पहले जो अट्रैक्शन था संसार में, बड़ा अट्रैक्शन था आपके अंदर, बड़े इसके लिए लालायित होते थे, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार थे आप। तो अब आप जिंदगी दांव पे लगानी है तो ईश्वर के लिए लगाओगे, यानी गुरु के लिए लगाओगे, संसार के लिए नहीं लगाओगे। ये बेसिक चेंज आपके अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए जिस ईश्वर की हम बात करते हैं वो हमको एक थ्योरी जैसी लगती है, लेकिन जो ईश्वर के भक्त हैं, जिन्होंने गुरु के अनुसार साधना की है, उसकी आज्ञा पालन उन्होंने किया है, उनको इस बात का अच्छी तरह से बोध है कि गुरु ने जो कुछ भी लिखा है या कहा है वो सब सत्य है। कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट बुक में लिख के छोड़ जाता है, कहता है ये एक्सपेरिमेंट जब रिवाइज करोगे आप, रिपीट करोगे, तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो मुझे मिले थे, वही गुरु कहता है। इस सृष्टि का भेद मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, लेकिन मेरे अनुसार चलोगे तो इस सृष्टि का वही भेद आपके सामने प्रकट हो जाएगा जो मेरे सामने प्रकट हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली देखो आप, शरीर नाशवान है या नहीं, इसमें किसी को डाउट की बात नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज होती है डाउट होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं किसी को डाउट नहीं होता, शरीर नाशवान है या नहीं, खाली नाशवान नहीं, ये टेम्परेरी भी है या नहीं, कुछ दिन के लिए मिला है। हम देखते हैं किसी का 2 दिन की आयु में शरीर शांत हो जाता है, किसी का 2 वर्ष की आयु में शरीर शांत हो जाता है, किसी का 20 वर्ष की आयु में शांत हो जाता है, किसी का 30 वर्ष की आयु में शांत हो जाता है, किसी का 100 वर्ष की आयु में शांत होता है। तो मैं किस चीज का वेट कर रहा हूं? अभी मैं बहुत जीऊंगा, सोचूंगा, अभी पहले ही बहुत लेट हो चुकी है, अब और क्या सोचेगा। तो इसीलिए महाजी कहा करते प्रेमी मौत को सदैव याद रखा करो, क्योंकि हम कल्पना कर लेते हैं मैं भी 40 साल तो और जीऊंगा, एवरेज आयु 80 साल तो है ही, 40 की आयु हुई है तो 40 साल तो मैं जीऊंगा, कल्पना कर लेते हैं। कौन सा रोग लग जाएगा आपको, साल भर में ही खत्म हो जाओगे आप। कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा, 1 मिनट में ही खत्म हो जाओगे आप। तो ये चीज जो है, जो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो टालने वाली नहीं है कि अभी मैंने बहुत जीना है फिर कर रहे हैं। तो इसीलिए जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है, वो फिर गुरु की बात को एक्सेप्ट करके ईमानदारी से उस पर चलने की कोशिश करता है। और कहीं किसी गुरु ने नहीं किया कि तुमको संसार छोड़ के ईश्वर मार्ग पर चलना पड़ता है, कहां गया था? देह ही संसार है, महाराज कहते हैं, या कहते हैं देह करके संसार है, वो कहते हैं देह और संसार एक ही चीज है। तो देह छोड़ सकते हो क्या आप? जब देह आप जंगल में रहोगे तभी देह आपसे चिपकी हुई है, तो संसार आपसे नहीं चिपका रहेगा। जंगल में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होगी? खाने को भी कुछ ना कुछ कंदमूल फली मिलेंगे, मिलेगा तो कुछ ना कुछ, पीने को पानी भी कहीं ना कहीं मिलेगा ही आपको, हवा भी मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं गुफा में रहो कहीं भी आश्रय भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी आपको। ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में मिलती है और जंगल में नहीं मिलेगी आपको? सब चीज मिलेगी, वैरायटी बदल जाएगी इसकी। इंसान ने जहां भी रहना है संसार में ही रहना है, इसलिए ये सोचना कि मुझे जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करूंगा तो अज्ञानता है। व्यक्ति जहां है, जिस हालत में है, उस हालत में ही वो ईश्वर मार्ग पर चल सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारी जो बुद्धि का निर्णय है वो बदलता नहीं है, बहाने बहुत तलाश कर लेते हैं, बुद्धि का निर्णय हमारा नहीं बदलता। तो मूल जो माया है वो महाजी कहते हैं कर्तापन है। तो कर्तापन से प्रकट होती है वासना। वासना फैलती कैसे है? डिजायर्स के रूप में फैलती है। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुखसार। और संसार में हम क्या ट्रेनिंग लेते हैं, क्या एफर्ट्स करते हैं? जो डिजायर्स हमारे लिए मुसीबत है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, हम उन डिजायर्स को फैलाने का काम करते हैं। ये हमारी फंडामेंटल ट्रेनिंग है जो इस दुनिया में हमको मिलती है, चाहे वो टेक्नोलॉजिस्ट है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी है, चाहे सब आपको यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई डिजायर्स को कैसे फैलाया जाए, कैसे डिजायर्स को पूर्ण किया जाए, यही ट्रेनिंग। इसीलिए ये रास्ता संसार से उलट कहा जाता है। संसारी जीवन का मतलब इच्छाओं को फैलाने का रास्ता, आध्यात्मिक जीवन से मतलब इच्छाओं को एलिमिनेट करने का रास्ता, इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त करने का रास्ता। तो इच्छाओं से मुक्त कौन है? जो इच्छाओं से मुक्त है उसका नाम या तो सत्पुरुष है, अवतार है, सद्गुरु है, या उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर और सत्पुरुष दोनों एक ही चीज है। क्यों? गुरु शरीर नहीं है, गुरु अंतर्यामी है। जब अंतर्यामी है तो वो ईश्वर ही है। वाणी साफ कह रही है कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। बड़ा स्पष्ट है, जब सतगुरु अंदर है और उसका गेट अंदर से बंद है, वो गेट खुलेगा कैसे? जहां गुरु का या ईश्वर का दर्शन होगा, तो बाहर जो वासना तूने फैला रखी है, इस वासना को सिकोड़ने के मार्ग पर, उसको समाप्त करने के मार्ग पर जब तू गुरु आज्ञा के अनुसार चलेगा और उसके अनुसार तू साधना करेगा, तो अंतर्यामी गुरु, अंतर्यामी ईश्वर का उसको अनुभव होगा। तब तुझको पता लगेगा कि जो सारे शास्त्र कहते थे चिल्ला चिल्ला के कि शांति अंदर है, शांति अंदर है, बाहर बेचैनी है, तब तेरी प्रैक्टिकल आंख खुलती है कि वास्तव में शांति अंदर है, बाहर बेचैनी के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब अंदर का रस आता है तो ये जीव फिर बाहर की बात भी नहीं करना चाहता, फिर एकांत स्थान की तलाश करता है जहां बैठूं मैं और प्रभु की यात्रा। इसका एक्सपीरियंस बोल रहा है हमें, क्योंकि सत्पुरुष की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, केवल मुंह से कहते रहते हैं पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। सत्य है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता। कहां विश्वास होता है कि संसार दुख रूप है? होता है विश्वास? यदि यह विश्वास हो जाए संसार दुख रूप है, तो जितना टाइम मैं संसार में बर्बाद करता हूं संसार को इकट्ठा करने के लिए, 50 साल भी मेरी जिंदगी के निकल चुके हैं, गोल्डन पीरियड तो गया, बाकी बुढ़ापे के जो 50 साल बचे हैं उसमें भी मैं अभी फैला ही रहा हूं, अभी भी निश्चय नहीं आया कि गुरु सत्य बोल रहा है। कहां गुरु विश्वास है? इसलिए हमारी चाल भी वैसी है जैसी संसारियों की होती है। तो गुरु विश्वास का मतलब ये होता है कि गुरु जो निश्चय प्रकट कर रहा है, सिंपल सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। वो कह रहे हैं संसार दुख रूप है, इच्छाएं जो हैं मनुष्य की मानसिक बेचैनी बढ़ाती हैं, ये बात कह रहा है, नहीं कह रहा, लेकिन हमारी कल्पना में ये बात आती नहीं, हमारे निश्चय में आती नहीं कि संसार दुख रूप कहते हैं। कहां आती है बात? यदि ये निश्चय में आ जाए ये बात, तो जब संसार दुख रूप है तो मैं इसमें इसको फैला क्यों रहा हूं, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए क्यों फैला रहा हूं? क्योंकि मेरा निश्चय नहीं बदला है, बहानेबाजी कर रहा हूं केवल। यदि संसार सुखरूप होता तो कोई तो सेटिस्फाई होता यहां पर। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स, बड़े बड़े चीफ जस्टिस, सबकी हिस्ट्री देख लो, सब एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि सबने सुसाइड किया है। नोबेल प्राइज विनर्स सबने सुसाइड किया है। तो हमारे लिए तो ये क्लाइमेक्स, सुख का क्लाइमेक्स है इनके पास, हमारी दृष्टि में तो ये सुख के क्लाइमेक्स पर बैठे हुए हैं। तो सुसाइड क्यों किया इन्होंने? इसका मतलब सुख उसे कहते हैं जहां मानसिक चैन मिलता है। लेकिन महाराज जी संतावलास में लिख रहे हैं कि हर जीव संसार में सुख की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है। हर जीव संसार में आकर संतोष की प्राप्ति की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, परंतु किसी को भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी को भी, चाहे वो मच्छर की योनि में है, चाहे वो गाय की योनि में है, चाहे वो मनुष्य की योनि में है, किसी को चैन नहीं मिल रहा है। चैन मिला किसको है? वो सत्पुरुष की हालत आप देखोगे तब आपका खुद ही दिल कहेगा कि इसको चैन मिला है। क्योंकि महाराज जी जब जंगल में बैठे होते थे, सरूपा जैसा जंगल, फीला जैसा जंगल, निखेत पर्वत जैसा जंगल, घनघोर जंगल थे। निखेत पर्वत पर तो इतनी ठंड होती थी कि दिन में भी भगत जी को लकड़ियां जलाकर हाथ गर्म करने पड़ते थे वाणी के संशोधन के लिए। और महाराज जी जब कुटिया से निकल के बाहर बैठते थे तो रीछ वगैरह उनके चारों तरफ टहलते रहते थे। और भगत जी ने खुद एक रात को देखा था कि रात को जब शेर ने दहाड़ मारी उनकी कुटिया के बाहर, तब महाराज जी ने कहा, बनारसी डर तो नहीं लग रहा है? तो भगत जी कहते हैं, महाराज जी आप हैं तो डर कैसा, आपके बिना तो यहां मैं एक पल भी नहीं रह सकता। विचार करो जरा, इससे ज्यादा भयंकर परिस्थिति, इससे ज्यादा दुखदायी परिस्थिति मनुष्य के लिए क्या हो सकती है? लेकिन वो सत्पुरुष समाधि में लीन है, मतलब कि आनंद के सागर में लीन है वो। ना कोई दुविधा है, ना कोई संशय है बुद्धि के अंदर, ना कोई दुख है, ना कोई क्लेश है। महर्षि रमण की स्थिति देख लो आप, 70 साल की एज में उनको कैंसर हुआ, 3 ऑपरेशन उनके बाजू के हो गए, और साफ कह दिया उन्होंने कि बिना एनेस्थीसिया के मेरा ऑपरेशन होगा, और चेहरे पर उनके शिकन तक नहीं थी कि किसी पेन की, ऑपरेशन हुए। क्या चीज है फिर? हम तो बिना कष्ट के तड़प रहते हैं, घर में सब सुख में है ना, जीवन एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते, इससे ज्यादा क्लोज कौन मिलेगा आपको? पति पत्नी से ज्यादा क्लोज कौन मिलेगा आपको? वही आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा आपको? तो हम संसार से कुछ भी नहीं सीखते, केवल हमारी आदत बनी हुई है कि दूसरों को चलते हुआ देख के नकल करके मैं भी कुछ उसमें छांट लेता हूं, मैं भी ये करूंगा, जो तेरा स्वभाव है। दूसरों की अपने स्वभाव के अनुसार नकल करके जो चीज पसंद आती है, जैसे 10 मिठाइयां रखी हो तो मेरा जो स्वभाव है उसके अनुसार एक सिलेक्ट कर लूंगा मैं, 10 बुरी नहीं है वो, बाकी 9 भी दूसरे लोग पसंद करेंगे, ये मुझे जो पसंद है बने, मैंने छांट ली इसमें, इसमें मैं खुश हूं। तो अपने स्वभाव के अनुसार मैं संसार की नकल करके कुछ आइटम छांट लेता हूं और पूरा जन्म उसमें लगा देता हूं, खुशी नहीं। तो बताइए आप, जिंदगी की चाल बदलना ये क्या छोटा मोटा निर्णय है? बिना सोच विचार के आप चल पड़ोगे क्या? नहीं चल सकते। इसलिए सत्संगी बहुत होते हैं, चलने वाला कोई कोई होता है, क्योंकि सत्संग सुनते हैं, सोचने को कोई तैयार नहीं है। सत्संग सुना, निर्णय भी सुना, गर्दन भी हिलाई, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे विचार कोई नहीं। तो निर्णय आपका वही संसारिक बना हुआ है, आप भी संसारी बने हुए हो, संसारी चाल आपकी बता रही है आप। यदि किसी तरह से कोई गहरा रोग लग गया शरीर में, उस समय होश आता है, अरे गलती कर गया मैं, क्या करना था, क्या कर गया मैं। माँ जी कहते प्रेमी अब पछताने से क्या होता है, जब तेरे पास समय रूपी पूंजी थी तेरी जेब में, उस पूंजी तूने पैसा कमाने में लगा दी, जिंदगी की बर्बादी में लगा दी तूने, अब पछताने से क्या होगा। इसलिए बुद्धिमान वो है जिसके जवानी के दिन है, इस जवानी के दिनों में वो होश में आ जाए। गुरु जो संसार का सर्वोच्च शिक्षक है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिक्षक है गुरु, उस गुरु को मैं अपना शिक्षक बना लूं यदि, उसकी बातों को गहराई से सीखने की समझने की कोशिश करूं, तो याद रखिए वो गुरु ईश्वर है, तेरी देह भी उसके कारण चल रही है, तो तुझे विश्वास नहीं है कि उसकी सहायता तुझे मिलेगी। यदि तू समझने में गंभीर है तो वो तेरी सहायता करेगा, सारी दुनिया उसके कमांड में है, तुझको उसकी सहायता जरूर मिलेगी यदि तू अपने प्रति ईमानदार है तो। यदि तू बहानेबाज है तो तू दुनिया भटक रही है, तू ही भटकता रहेगा। ऐसे पहला निर्णय हमने यही करना होता है गुरु को देखकर कि शरीर की हालत उनकी कैसी भी क्यों ना हो, उनकी शांति भंग नहीं होती, और मेरा हाल ये शरीर मेरा स्वस्थ भी हो तब भी मैं अशांत रहता हूं, तो फिर मैं निर्णय ये क्यों नहीं करता कि दुनिया में शांति नहीं है। दुनिया की शांति यदि है तो यदि एग्जाम्पल से समझा जाए तो वो शांति ऐसी ही है जैसे कि कोई तेज धूप में यात्रा कर रहा हो और सामने आधा किलोमीटर पे उसको कोई हरा भरा पेड़ नजर आ जाए तो आशा उसे आ जाती है कि अब मुझे ठंडक मिलेगी। सारी धूप में 2 घंटे की यात्रा करके पेड़ के नीचे वो शीतलता प्राप्त करता है, लेकिन यात्रा तो उसे लंबी है, नीचे कब तक खड़ा रहेगा, फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, फिर वही। तो संसार के बीच में जो सुख मिलते हैं ना हमको, किसी को बच्चे की तमन्ना है, बच्चा घर में हो गया, सुख मिल गया, लड़के की तमन्ना है, लड़का पैदा हो गया, सुख मिल गया, शादी की तमन्ना है, शादी हो गई, सुख मिल गया, किसी नौकरी की तमन्ना है, अच्छी वो नौकरी मनचाही मिल गई, सुख हो गया, लेकिन वो कितना टेम्परेरी होता है। मान लिया मैंने IAS पास कर दिया, मैं ADM बन गया, तो ADM की पोस्ट पे जब बैठूंगा मैं तो, और ADM का रुतबा मेरा होगा, उसका सुख तो होगा आपके अंदर, चाहे वो अहंकार की पुष्टि हो, आपके मान सम्मान मिले आपको, या उसकी सैलरी मिले, तो सुख की अनुभूति तो होगी, हाँ मेरे सैलरी में चैन से मैं खाऊंगा पीऊंगा, परिवार पालन करूंगा। लेकिन जो सुबह से लेकर रात तक DM की जिम्मेदारी है, वो जब संभालोगे उसमें सुख है क्या? विचार करके देखो, सुबह से लेकर रात्रि तक मान लिया तो ईमानदार है, तो ADM है या DM है तो राजनेता तो तेरे पीछे लगे रहेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, सारे काम तो जिले में ही होंगे ना, तेरे अंदर क्या तहलका मचेगा जब विचार करके देखे। कितनी बार तुझको बेईमानी करने के लिए मजबूर करेंगे, नहीं बात मानेगा तेरा ट्रांसफर कर देंगे, जान के तुझको फैमिली से दूर भेज देंगे, किस पोस्ट पे चयन है अभी, तो 4 पोस्ट के सुनने में है बस ये। जब चेयर संभालोगे सारा चयन चला जाएगा आपको, वहां बेचैनी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, तो चैन बस इतना ही मिलेगा जैसे धूप में यात्रा करने वाले को पेड़ के नीचे की छाया का एक कुछ छड़क चैन मिलता है, उसके बाद उसकी लंबी यात्रा धूप की फिर है। तो हम इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं, कि अपने ही बारे में जो हमारी प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं उनका ही विश्लेषण हम नहीं कर पाते, क्योंकि आदत ही नहीं है सोचने की, नकल करने की आदत। सबको दुखी देखते हैं, दूसरे का एनालिसिस कर लेंगे, सबको दुखी देखते हैं, लेकिन छांटते किसको है, उसमें से जो सुखी नजर आता है उसको छांटते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं। और सत्पुरुष कहते हैं राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। सत्पुरुष का निर्णय ये है। गुरु तूने बना लिया है, उसका निर्णय तो स्वीकार नहीं करता। तूने खा गुरु बनाया है क्या? सहजो भाई कहती हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। जिसने गुरु परायण जीवन व्यतीत किया है वही सुखी है, बाकी सारे दुखी। संत को तो कोई वहम ही नहीं, वहम तो हमको है। इसीलिए सत्य यह है कि हमारा किसी के बारे में निर्णय नहीं है। ईश्वर की तो बात छोड़ दो, खैर ईश्वर से हम कैसे कैसे अलग हुए, हम दुख में क्यों फंस गए, इन बातों को सोचने के बजाय ये सोचो कि इस दुखों को दूर करने का इलाज किसने किया। वो सत्पुरुष है, वो अवतार, उसने इलाज किया है इसका, और इस दुखों से वो मुक्त हुआ, क्योंकि उसके चित्त में शांति है, इसलिए उसकी समाधि लगती है। आपकी समाधि लगा के दिखा दो, चलो आप 30 मिनट महामंत्र का जापी करके दिखा दो, चलो आप में से सब 30 मिनट महामंत्र का जाप करके दिखाओगे 100% सारे फेल हो जाओ। मन में इतनी बेचैनी है कि महामंत्र याद नहीं आएगा, जिससे मेरा कल्याण होने वाला वो याद नहीं आएगा, जिससे मेरा मुझको बेचैनी मिलने वाली है वो सारा संसार याद करते रहोगे। इतने तो गुलाम हो आप मन के, कहां चैन है आपके अंदर, किस चैन की बात करते हो? गुलामी मेरी इतनी गहरी है कि मन मेरा है, मैं उसका मालिक नहीं हूं। अहंकारी इतना हूं कि मुझसे ज्यादा ऊंचा कोई आदमी नहीं है। तो मेरी अंदर की हालत यह है कि अपने ही मन का मालिक नहीं हूं मैं, अपनी ही देह का मालिक नहीं हूं मैं, ऐसा गरीब हूं मैं, ऐसा फटेहाल हूं, अहंकार कितना करता हूं। तो इसीलिए सत्पुरुषों की इस बात को स्वीकार कर लो, केवल सुनकर नहीं, इसका एनालिसिस करके, इसका विश्लेषण करके, और वो विश्लेषण महाराज जी ने समता विलास में बड़ी बारीकी से किया हुआ है। मैं उसकी जरूरत नहीं समझता, उस पर मेहनत करने को तैयार नहीं हूं, गहराई से विचार करने को तैयार नहीं तो समता विलास लिखने का क्या पर्पज था महाराज जी का? इतने बड़े बड़े दो चैप्टर लिखे महाराज जी ने, वासना विवेक और योग मार्ग बोध। योग मार्ग बोध में शायद करीब 150 वचन होंगे, और इसमें भी वासना विवेक में भी करीब 125 वचन तो होंगे लगभग। तो केवल इसी बात का एनालिसिस करने के लिए लिखे महाराज जी। कौन विचार करने को तैयार है? तो इसीलिए यदि आप विचार करने को तैयार नहीं हो, गुरु ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय पर पहुंचने को तैयार नहीं हो, तो आप दुखी जीवन आपका ऐसे ही चलता रहेगा। गृहस्थ के और संसारी कामकाज की चक्की में दो पार्टों में पिसते रहोगे आप, बस यही सोचते रहोगे आज ये मुसीबत का हल कर लिया मैंने, कल को ये मुसीबत खड़ी है इसका हल निकाल लूंगा मैं। बचपन से लेके आज तक मुसीबतें ही हल करते रहे हो, चैन कभी नहीं मिला है, और आगे भी मुसीबतें ही हल करते रहोगे, चैन कभी नहीं मिलेगा। मुसीबत का भंडार आपने अर्न किया है, अर्न करके आपने मुसीबत का भंडार इकट्ठा किया है, इसी में फंसना है आपने। कौन बचा सकता है? गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु पर विश्वास ही नहीं करते। मुंह से कहते हो तो महाजी मेरे गुरु हैं, महाजी मेरे गुरु हैं। तुम्हारी करनी से पता लगना चाहिए कि महाजी तुम्हारे गुरु हैं, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी करनी तो साफ पता लगी, तुम घोर संसारी हो, साफ पता लग रहा है तुम्हारी करनी। इसलिए चैन तो आपको जिंदगी में दूर दूर तक नहीं मिल सकता, असंभव बात। तो अध्यात्म की जो बेसिक नॉलेज है वो यही है कि जीव, जीव उसे कहते हैं जो जिंदा है, जो जी रहा है। जीव अपने ही मन और अपनी ही देह के बंधन में है। मन में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तेरा स्वभाव बदला है, तेरी इच्छाएं बदल रही हैं, तेरे विचार बदल रहे हैं, मन में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तेरी देह में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जवान हो रही है, बूढ़ी हो रही है, रोगी हो रही है। और जहां ये रह रहे हैं संसार, उसमें भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। सरकार बदल रही है, सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों के स्वभाव बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। आप देख रहे नहीं कितना पढ़ाई में एडवांसमेंट हो गया सारी दुनिया में, कितनी हाईएस्ट क्लास की रिसर्च हो चुकी है, लेकिन रुकी है क्या अभी वो? तो जितना एडवांसमेंट हुआ है, जितनी रिसर्च गहरी हुई है, उतना ही मनुष्य की मौत के साधन बढ़ गए हैं, उतना ही मनुष्य की मौत के साधन बढ़ गए हैं, मनुष्य के जिंदगी को खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या डेवलपमेंट हुआ भैया? क्या डेवलपमेंट हुआ? तो ये नकल करने वालों की आंख तो यही कहेगी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अकल वालों की जो बुद्धि है वो कहेगी मनुष्य का पतन हुआ है। सारे संसार का पतन हुआ। इसीलिए आज भी हम सोच लें, कम से कम तपोभूमि आए हैं तो निर्णय करके जाएं यहां से कि मैंने संसार में काम चलाना है। गृहस्थी है, घर में रहता हूं, कुछ मेरी शरीर की जरूरतें हैं, कुछ घर वालों के शरीर की जरूरतें हैं, तो मैंने शौक पाल नहीं पालने, ना दूसरों के शौक पूरे करने हैं। जरूरतें अपनी भी पूरी करनी है, जरूरतें घर वालों की भी पूरी करनी है। मैंने उतनी कमाई करनी है, उतने पैर संसार में फैलाने हैं, बाकी वक्त बाकी सामर्थ्य बचाकर मैंने ईश्वर मार्ग की खोज करनी है, उसका स्वाध्याय करना है, उसकी ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए वो अंतर्यामी है। अरे सातवें आसमान पे होता तो मुझे लगता कि मैं तो पहुंच ही नहीं सकता वहां पर। अरे वो अंदर है भैया, और तू भी अंदर ही मौजूद है, जीव तो अंदर ही है ना, देखे। और गुरु कह ही रहा कि मैं तेरे अंदर हूं, और गुरु ये भी लिख के दे रहा है समता विलास में कि गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। तो गुरु खुद ही लिख के दे रहा है कि गुरु परमेश्वर है, अब तुझे क्या वहम हो रहा था? सारी सृष्टि तो परमेश्वर चला रहा है ना, मनुष्य तो नहीं चला रहा। तो वो परमेश्वर तुझको लिखकर दे रहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, और मेरी तरफ जैसे जैसे तू बढ़ेगा वैसे वैसे तेरे मन की शांति मिलेगी, अर्थात जीव को शांति प्राप्त होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। संसार में संतोष है ही नहीं। तो इस निर्णय के अनुसार यदि मैं नहीं सोचूंगा तो जैसे मैंने इतने साल निकल गए, मेरे गर्त में चले गए, बाकी भी चले जाएंगे। तो अपने दुख से लड़ने के लिए मैंने खुद ही सोचना है। मार्गदर्शन ईश्वर आपको गुरु के रूप में आकर दे रहा है। कितनी बड़ी चीज ईश्वर ने प्रकट कर दी, महामंत्र प्रकट कर दिया, ये तो ईश्वर ही जानता है कि इस घोर कलयुग में गुरु मिलेगा कहां, मिलेंगे तो नकली मिलेंगे। और जीवों की पात्रता भी नहीं है, पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए पात्रता भी तो चाहिए, नहीं चाहिए या ऐसे मिल जाएगा गुरु आपको? फिर तो वही होगा भी, एक नाम देने वाला मिल गया, एक नाम लेने वाला मिल गया, ना शिष्य असली है ना गुरु असली, दोनों नकली मिल गए, क्या होना है, रिजल्ट क्या होना है वहां पर? यही होगा। इसलिए प्रभु ने कृपा करके महामंत्र प्रकट कर दिया गुरु के माध्यम से, उसकी वाणी प्रकट कर दी और जीवन कैसे जीना है सारे संत विलास में पूरे के चैप्टर के चैप्टर लिख दिए। तो हम पढ़ने को समझने को तो तैयार हो, पैसे की कमाई के लिए हमने कितनी विद्या अर्जित की है, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, MBA कर लिया, क्या नहीं कर लेते हम लोग। लेकिन इसमें वही गहरी बुद्धि लगाएं जैसे एक रिसर्च स्कॉलर लगाता है, देखो सारे भेद खोलते नहीं खोलते आप। मेरे मन में महामन के बारे में वहम था, वहम का मतलब कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम, मतलब मुझे कभी किसी ने संगत में बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया किसी ने कि महामन का भी जाप किया जाता है। मेरे टाइम में यह हाल थी, नाम के बारे में मुझे पता लग गया था क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था कि नाम केवल गुरु से मिल सकता है, वो असली नाम है, बाकी कोई नाम दे दे वो नकली नाम है, उसका कोई फायदा ही नहीं होता। तो मैं करूं तो क्या करूं, नाम तो मुझको भी मिल गया था, लेकिन जब पता लग गया ये तो इसका कोई फायदा ही नहीं है जाप करने का, तब फिर मैंने खोज करी। फिर तो सारे शास्त्र टटोले, सारी महाजी का लिटरेचर टटोला, जो शिष्य थे जागरूक शिष्य महाजी के उनसे वार्तालाप करिए, फिर भी इस रिसर्च को पूरी होने में मुझको 16 साल लग गए। 16 वर्ष तक मेरी रिसर्च चलती रही, 16 वर्ष बाद इस निर्णय पे पहुंचा ये महामंत्र वास्तव में सर्वसिद्धिदाता है, इसका जो जाप करेगा प्रभु दर्शन होए संयोग उसको प्रभु का दर्शन मिलेगा, ये वाणी शाश्वत सत्य है। जब निर्णय हो गया तो उसको अपना लिया, दिल को चैन तभी आया जो गुरु के निर्णय से अपना निर्णय मैच कर गया, नहीं और इस मार्ग पर चल पड़ा। इसीलिए ये ना पूछें कि जीव ईश्वर से अलग कैसे हुआ, जीव दुख में कैसे फंस गया, इस बात की खोज करें कि जीव ईश्वर से मिले कैसे, या ईश्वर का दर्शन कैसे करें और अपने अपने दुखों को दूर कैसे करें। इसके लिए आध्यात्मिक विद्या है, गुरु का मार्गदर्शन है, यदि उस पर विश्वास करके चले तो एक दिन आपके दुख दूर अवश्य हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम।